अध्याय 5 बौद्ध धर्म। बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में प्रचलित कर्मकांडो वैदिक यज्ञ के हिंसा तथा प्रवृत्तिवादी दृष्टिकोण से संतरस्त जनमानस को सच्चे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने वाले तथा निवृत्तिवादी आध्यात्मिक चिंतन के उत्कृष्ट विचारक साक्य मुनि सिद्धार्थ का जन्म ईसवी पूर्व 563 में लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। सिद्धार्थ साक्यगढ़ से संबंधित थे। सुत्त निपात में साक्यों को उत्तम क्षत्रिय वंश कहा गया है। महावस्तु के अनुसार साक्यों का यह कुल कौशल की राजधानी साकेत से निर्वासित होकर हिमालय के तट प्रदेश में निवास करने लगा था तथा वहाँ उन्होंने कपिलवस्तु समेत अन्य नगरों की स्थापना की थी। साक्यगढ़ में कपिलवस्तु के अतिरिक्त चातुमा, सामग्राम, खोमदुस्स, शीलावती, मेदलुम्प, नगरक, उल्लुम्प, देवता एवं शक्कर नामक नगर थे। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल के तिरोलाकोर तथा सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा नामक स्थान से की जाती है। सिद्धार्थ के पिता सुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया साक्यगढ़ के देवदह कुल से संबंधित थी। खोमदुस ब्राह्मणों का ग्राम था। सोम वस्त्र के निर्माण का स्थान होने के कारण इसका नाम सोमदुस पड़ा था। ऋषि डेविस के अनुसार साक्यगढ़ में 80,000 कुल थे तथा इसकी जनसंख्या लगभग 500,000 रही होगी। साक्यों का गोत्र गौतम था जिसके कारण वह गौतम कहलाए। सिंहली परंपरा के अनुसार साक्य राजा जयसेन तथा देवदह दोनों के एक एक पुत्र तथा एक एक पुत्री थी। उनके पुत्रों का एक दूसरे की कन्या से विवाह संपन्न हुआ था। इससे उत्पन्न संतानों का विवाह भी इसी तरह से हुआ। जयसेन के पौत्र तथा सिंहनु के पुत्र सुद्धोधन ने देवदह के पुत्र अंजन की दो पुत्रियों महामाया तथा प्रजापति गौतमी से विवाह किया था। सिद्धार्थ सुद्धोधन तथा महामाया के पुत्र थे तथा प्रजापति गौतमी नंद की माता थी। बुद्ध के जन्म से पहले उनकी माता महामाया ने स्वप्न देखा कि उनको हिमालय पर्वत में स्थित अनाबातापत झील में ले जाया गया है। वहां उनको चारों दिशाओं के दैवी संरक्षकों द्वारा स्नान कराया गया है। तत्पश्चात एक श्वेत हाथी ने जिसकी सूंड में कमल था उनके घर में प्रवेश किया। कौंडिन्य देवल नामक ऋषियों ने यह भविष्यवाणी की कि विश्व विजयी होने वाले पुत्र या अध्यात्म से समस्त विश्व पर विजय पाने वाले पुरुष के जन्म का संकेत है। प्रसव वेदना से कुछ ही समय पहले रानी महामाया ने सुद्धोधन से अपने मातृकुल के नगर देवदह में जाने की इच्छा प्रकट की। राजा की अनुमति के पश्चात महामाया ने यात्रा प्रारंभ की तथा मार्ग में वे लुम्बिनी वन में रुकी। यहीं पर वे शाल वृक्ष के नीचे उसकी शाखा पकड़े खड़ी थी कि प्रसव वेदना से व्याकुल हो गई। इस प्रकार बुद्ध का जन्म हुआ। 7 दिन पश्चात महामाया का देहांत हो गया। अतः उनका लालन पालन उनकी विमाता एवं मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ। लुम्बिनी में सम्राट अशोक ने अपनी यात्रा के दौरान स्तंभ लगवाया था जिसे रुमिनी देई अभिलेख कहा जाता है। इस अभिलेख पर हिंद बुद्ध जाते शाक्य मुनि अर्थात यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था अंकित है। अशोक ने यहाँ धार्मिक कर बलि माफ कर दिया था तथा भूमि कर भाग को घटाकर 1/8 कर दिया था। यह बस्ती के पास नौतनवा स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर दूर नेपाल के बिथरी नामक स्थान पर है। 5वें दिन सिद्धार्थ का नामकरण संस्कार किया गया जिसमें 108 ब्राह्मणों ने भोजन किया था। अंगुत्तर निकाय के अनुसार सिद्धार्थ काशी के चंदन कौशेक वस्त्र 3 ऋतुओं के लिए 3 प्रसादों का भोग करते हुए 16 वर्ष के हुए। ललित विस्तार के अनुसार वे शिक्षित, धनुर्विद्या में प्रवीण तथा राजकीय कार्यों में निपुण थे। सिद्धार्थ में भौतिकता प्रदान करने के लिए सुद्धोधन ने उनके मनोविनोद के लिए गणिकाएं नियुक्त की थी। संभवतः ऐसा इसलिए था कि सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही राजसी प्रवृत्ति से विमुख होने लगे थे तथा उनके चिंतन की आकांक्षा ने उनके पिता को दुखी कर दिया था। सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। साक्य जन अपनी कन्याओं का विवाह शिक्षित वर्ग को छोड़कर अन्य किसी के साथ नहीं करते थे। ललित विस्तार के अनुसार गौतम के साथ कुमारी गोप के विवाह के प्रस्ताव पर उसके पिता ने कहा कि वह अपनी पुत्री को ऐसे राजकुमार को नहीं दे सकते जो घर पर विलासिता से पला हो तथा शिल्प एवं युद्ध विद्या में अनभिज्ञ हो। महावस्तु के अनुसार गौतम के यशोधरा के पाणी ग्रहण के लिए 500 साक्य कुमारों के साथ आयुध कौशल प्रदर्शन में भाग लेना पड़ा था। साक्य संघ के लोग अपने संघ से बाहर विवाह नहीं करते थे। वे अपनी शाक्य राजकुमारी का विवाह कौशल के राजा प्रसेनजीत के साथ करने को तैयार नहीं हुए। यद्यपि ये उनके अधीन थे उन्होंने इसकी जगह वसब खतिया नामक एक दासी पुत्री को भेज दिया। इसी कारण थुब ने प्रतिद्रोह से शाक्यों का सर्वनाश कर डाला। उत्तर भारत के बौद्ध ग्रंथों में सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा है। बुद्धवंश में उनका नाम बद्धकच्छना, अट्टकथा में बिंबा तथा लति विस्तार में गोपा प्राप्त होता है। मध्यम निकाय के अनुसार भोग विलास तथा महलों के सुख के मध्य रहकर भी जीवन के कुछ निर्मम सत्यों जैसे जन्म, रोग, मृत्यु, दुख आदि से भी अत्यंत प्रभावित रहे। सिद्धार्थ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। पुत्र जन्म पर सिद्धार्थ ने कहा कि इससे बंधन का जन्म हुआ। मध्यम निकाय के अनुसार एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने एक रोगी, एक वृद्ध, एक शव तथा एक सन्यासी को देखा। इनकी स्थिति की ओर आकर्षित होकर सिद्धार्थ ने छंदक से उनकी स्थितियों का कारण पूछा तो सारथी ने कहा कि रोग, दुख, जन्म एवं मरण जीवन के सामान्य अनुभव हैं तथा सभी जीवों को यह भोगना है। जीवन के इन्हीं कठिन सत्य ने सत्यान्वेषी बुद्ध के मन में कृत्रिम संसार से विरक्ति उत्पन्न कर दी तथा वह सत्य की खोज की ओर उन्मुख हो गए। ज्ञान प्राप्ति। सांसारिक कार्यों से विरक्ति के कारण सिद्धार्थ ने चिंतन को आत्मसात किया। 29 वर्ष की अवस्था में एक रात कमरे में उनकी पत्नी बच्चे के मस्तक पर हाथ रख के शयन कर रही थी। दहली पर खड़े होकर उन्होंने बालक की ओर अंतिम बार देखा तथा महल का त्याग कर अपने घोड़े कंथक पर सवार हो नगर से बाहर चले गए। उनका सारथी छंदक भी घोड़ों की पूछ पकड़े हुए पीछे पीछे गया। शाक्य कौली तथा मल्ल जनपदों और अनोमा नदी को पार करके सूर्योदय पर मनयो के नगर अनुवनय में पहुंचे। वहां सिद्धार्थ ने अपने आभूषण तथा अश्व छंदक को सौंप दिए। अपना केश काट कर राजसी वस्त्र को एक सन्यासी को दान कर दिया और वे स्वयं उसके वस्त्र पहनकर ज्ञान की खोज के लिए चल दिए। बौद्ध धर्म में यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। मध्यम निकाय में 1240 में बुद्ध ने स्वयं महाभिनिष्क्रमण के बारे में वर्णित किया है। बौद्धि प्राप्त करने से पूर्व बोधिसत्व की दशा में भी मुझे विचार हुआ कि यह गृहस्थी का जीवन जहाँ पूर्ण शुद्ध धर्म में जीवन का अभ्यास सरल नहीं बहुत ही बाधक है। जब मैं किशोर अवस्था में जीवन के उठान पर कृष्ण केशों से युक्त नवयुवा था, जब अनिच्छा से युक्त मेरे माता पिता अश्रु मिलन मुख से रोदन कर रहे थे, मैंने अपने केश समश्रु काट डाले तथा काषाय वस्त्र धारण करके घर से बाहर हो अनिकेत जीवन में प्रविष्ट हो गया। परंपरा के अनुसार कंथक की वही दुख से मृत्यु हो गई। वहीं पर केश काटने तथा अश्व के मृत्यु स्थानों पर क्रमशः चूड़ामणि तथा कंथक राम विहार का निर्माण हुआ। उपनिषदों की उक्ति की अपने को स्वयं शिक्षित करने का प्रयत्न अंधे व्यक्ति की यात्रा के समान है को पालित करते उन्होंने योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ की। अपनी ज्ञान यात्रा के प्रारंभ में गौतम को दो ब्राह्मण स्त्री सन्यासिनियों ने अपने आश्रम में आमंत्रित किया तथा रैवत, ब्रह्मशी एवं राजक विदंडक नामक ऋषियों ने उन्हें अपने आश्रम में रुकने का आमंत्रण दिया जिसे उन्होंने आदर पूर्वक अस्वीकार कर दिया। बुद्ध ने वैशाली पहुंचकर प्रथम बार आलार कलाम का शिष्यत्व ग्रहण किया। कलाम के केशवपुत्र गढ़ से संबंधित थे तथा सांख्य दर्शन के विद्वान थे। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आलार कलाम समाधि बल के लिए विख्यात थे क्योंकि मार्ग के किनारे जब वे समाधि धारण किए हुए थे तब 500 संकटों को पास से जाते हुए उन्होंने न देखा न सुना। गौतम ने कलाम के अकिंचनीय तन के ज्ञान की शिक्षा ली। जब वे शून्य अवस्था में पहुंच गए तो गुरु ने उनको अपने समकक्ष मान लिया, किंतु गौतम के लिए यह सत्य का अनुभव नहीं था। उन्होंने गुरु से विदा लेकर राजगृह की ओर प्रस्थान किया। राजगृह में व्यहार पहाड़ी के पास बिंबिसार से गौतम की भेंट हुई थी। महावस्तु के अनुसार सर्वप्रथम वे आलार कालाम से मिले, फिर बिंबिसार से, तत्पश्चात रुद्रक रामपुत्र से भेंट की। राजगृह में रुद्रक रामपुत्र को गौतम ने अपना दूसरा गुरु बनाया जिन्होंने गौतम को संज्ञा से असंज्ञा का उपदेश दिया। सिद्धांत कर्म एवं आत्मा के संबंधों पर विवेचित था। गौतम ने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया परंतु आत्मा की स्थिति एवं परिवर्तन के संदर्भ में वह असमंजस में थे, अतः गौतम ने रामपुत्र को त्याग दिया। तत्पश्चात 5 परिवारजकों महानाम, भट्टीय, कौंडिन्य, वाप एवं असंग नामक ब्राह्मणों के साथ मगध जनपद के सैनिक सन्निवेश उरुवेला नामक स्थान पर गए तथा वहाँ नदी एवं ग्राम के समीप रहकर कठिन तपस्या प्रारंभ की। गौतम ने श्वास प्रश्वास तथा भोजन दोनों का नियमन किया तथा केवल मूंग, कुल्थी, मटर को अपने अंजलि पुट की मात्रा भर लेकर जीवन निर्वाह करने लगे। लेकिन यह कठिन काया क्लेश उनको ज्ञान न दिला सका। वे चावल, दही आदि का भोजन फिर करने लगे। इससे रुष्ट होकर उनके 5 ब्राह्मण ने यह सोचा कि गौतम ने तप का मार्ग त्याग दिया है। वे घृणा की दृष्टि से अपना कर उनका साथ छोड़ गए। जब गौतम ने भोजन लेने का निश्चय किया तो उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई तो पुत्र की प्राप्ति पर प्रतिज्ञा अनुसार वृक्ष देवता के अर्पण हेतु लाई थी। तीर्थ ग्रहण करने के पश्चात निरंजना नदी पार कर उन्होंने नगरोथ या बोधि वृक्ष के नीचे समाधि धारण की। सौथीय नामक घसियारे ने उन्हें आसन के लिए घास प्रदान की, जिस पर वे संबोधि प्राप्त करने के समय तक बैठे रहे। ध्यानमग्न गौतम को मार देवता एवं उनकी सेना का सामना करना पड़ा। प्रथम चरण में मार देवता ने गौतम को सूचित किया कि देवदत्त ने विद्रोह कर दिया है तथा सुद्धोधन को कारागार में बंद कर दिया, यशोधरा का हरण कर लिया है। गौतम इससे विचलित नहीं हुए। इसके पश्चात मार देवता ने भूकंप, बाण आदि प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें डराने का प्रयास किया। गौतम इससे भी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात मारदेव ने सिद्धार्थ से दयालुता एवं अच्छाई का उदाहरण मांगा। सिद्धार्थ ने पृथ्वी का स्पर्श किया। पृथ्वी ने उत्तर दिया कि मैं गौतम की अच्छाई की साक्षी हूँ। बुद्ध की मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा कही जाती है। अंततः मारदेव ने अपनी तीन पुत्रियों इच्छा, प्रसन्नता एवं लालसा को भेजा, जिन्होंने बुद्ध को भर्षक रिझाने का प्रयास किया, परंतु असफल रही। इसके पश्चात मारदेव ने गौतम को विश्व का साम्राज्य देने की बात कही। इसको भी अस्वीकारने के पश्चात मारदेव ने गौतम का मार्ग त्याग दिया। गौतम ने ध्यान की कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। मध्यम निकाय के अनुसार इनके प्रमुख चरण निम्न है। पहला, प्रथम ध्यान अवस्था, जिसमें विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख है तथा जो तार्किक एवं शुद्ध विचार युक्त होता है। दूसरी ध्यान अवस्था में वितर्क एवं विचारों का उपशम होने पर अवितर्क तथा अविचार युक्त समाधि होती है। तीसरा, तृतीय ध्यान अवस्था में विराग भाव होने से सुख प्राप्ति होती है। चौथा, चतुर्थ ध्यान में दुख सुख तथा सौमनस्य एवं दौर्मनस्य का अभाव हो गया। पांचवा, पंचम अवस्था में समाहित परिशुद्ध पर्यवदान निर्मल विगत उपक्लेश चित्त से पूर्व भाव की अनुस्मृति का ज्ञान। छठवां, छठी अवस्था में अपने अपने कर्मानुसार सत्व का उच्च नीच गति में जन्म मृत्यु का ज्ञान। सातवां, सातवीं अवस्था में आश्रमों का क्षय हो गया तथा इस प्रकार के ज्ञान से गौतम का चित्त कामाशयों से, भावाशयों से तथा अविद्याशयों से विमुक्त हुआ। यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है और यह दुख निरोध का मार्ग है। ऐसे गौतम ने यथाभूत ज्ञान पाया। आठवां, चित्त विमुक्त होने पर बुद्ध ने यह जाना कि उनका पुनर्जन्म शून्य हो गया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया लगभग 39 दिन तक चली। 39वें दिन 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने परम ज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति की थी। अंतिम दिन रात्रि के तीन यामों में तीन विधाएं प्राप्त कर प्रातः वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। मध्यम निकाय के अनुसार रात्रि के प्रथम याम उन्होंने पूर्वजन्मों की स्मृति रूप प्रथम विद्या प्राप्त की। रात्रि के मध्यम याम में उन्होंने दिव्य चक्षु प्राप्त किया तथा इसके द्वारा समस्त लोक प्रति समुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। इसमें उन्होंने सत्य को दो पक्षों में विभक्त किया, एक को अनित्य परतंत्र एवं सापेक्ष संसार तथा दूसरी ओर शांत निर्वाण। यह त्रैविधता की बुद्ध की सर्वज्ञता मानी जाती है। बुद्ध की सर्वज्ञता ही निर्वाण कहलाई। विनय पिटक के अनुसार बुद्धत्व के पश्चात चार सप्ताह तक बुद्ध बुद्धियान पर विराजमान रहे। यह अवस्था विमुक्ति सुख कहलाती है। तत्पश्चात वे उपदेश देने के लिए निकल पड़े। पहले धर्म ज्ञान के लिए उन्होंने आलार कालाम एवं रुद्र का रामपुत्र को चुना, लेकिन उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। महावक के अनुसार तपस्सु एवं भल्लिक उनके प्रथम उपासक शिष्य थे, लेकिन ज्ञान का विषय अति गुण होने के कारण उन्होंने अपना प्रथम ज्ञान इन दोनों को न देकर अपने पांच ब्राह्मण साथियों को दिया। उन्हें उपदेश देने के लिए उन्होंने सारनाथ के लिए प्रस्थान किया। बोधि वृक्ष एवं गया के बीच आजीवक भिक्षुपक से भेंट हुई। सारनाथ में ऋषि पत्तन के मृगदाव में पहुंचकर उन्होंने पांचों ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। बौद्ध संघ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में भिक्षु भ्रमणशील जीवन व्यतीत करते थे। भिक्षुओं के यथार्थ जीवन यापन के लिए स्वयं बुद्ध ने कुछ नियमों का निर्माण किया था। यह नियम पतिमोक्ष में संग्रहित हैं। समय अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहा। इनका अंतिम स्वरूप विनय पिटक में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इन नियमों को सात वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। दीक्षा, विहार, वर्षावास, वेशभूषा, भोजन एवं औषधि, भिक्षुणियों के लिए विशेष नियम, धार्मिक संविधान। दीक्षा। बुद्ध ने दीक्षा के नियमों को स्वयं बनाया था। प्रारंभ में दीक्षा का प्रारंभ यही भिक्षु नामक शब्द से होता था। पांच ब्राह्मणों की दीक्षा लेने के पश्चात यश, जो वाराणसी के एक धनी सृष्टि का पुत्र था, उसका पिता जो बुद्ध का पहला उपासक शिष्य बना, उसकी माता तथा उसकी पत्नी जो बुद्ध की पहली उपासिका शिष्या थी, तथा यश के चार मित्र तथा उसके अन्य 50 साथियों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इन 60 भिक्षुओं को दो अतिशय मार्गो अतिकिलमत्थ अनुयोग तथा काम सुख खलक अनियोग से बचना चाहिए। इन भिक्षुओं को बुद्ध ने दीक्षा का अधिकार प्रदान किया था। बुद्ध स्वयं यही भिक्षु सूत्र से दीक्षित कर सकते थे, परंतु भिक्षुओं के लिए त्रिशरण का सूत्र दीक्षा के लिए अनिवार्य था। कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म में प्रवेश हेतु इच्छुक था कुछ प्रारंभिक नियमों का पालन करता था, जैसे 15 वर्ष की आयु पूर्ण होना, माता पिता की आज्ञा, दास न होना आदि। इच्छित भिक्षु को बाल मुड़वाना पड़ता था, पीले वस्त्र धारण करने पड़ते थे, तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर 3 बार त्रिशरण सूत्र को दोहराता था। इस प्रारंभिक दीक्षा संस्कार को प्रवज्ञा का नाम दिया गया। प्रवज्ञा की अवधि परिवीक्षा की थी तथा इस काल में उसे 4 निश्चयों का पालन करना होता था तथा कई प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता था। प्रवज्ञा के कुछ नियमों का विकास बुद्ध के कपिलवस्तु के भ्रमण के दौरान हुआ था। कपिलवस्तु में बुद्ध ने अपने पिता प्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अंतःपुर की स्त्रियों को धर्म का उपदेश दिया तथा अपने पुत्र राहुल एवं मौसेरे भाई नंद को भिक्षु बनाया। नंद की दीक्षा उसी दिन हुई जिस दिन उसके राज्याभिषेक एवं जनपद कल्याणी नामक एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह निश्चित था। इन राजकुमारों के भिक्षु बन जाने से सुद्धोधन के राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। इससे विचलित होकर रोते हुए वह बुद्ध से बोले, पुत्र का प्रेम त्वचा, मांस एवं अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। इसी घटना के पश्चात बुद्ध ने यह नियम बनाया कि बिना माता पिता की अनुमति के कोई भिक्षु न बनाया जाए। बुद्ध ने राजकीय सेवकों, गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति, दंडित अपराधी तथा कोई भी बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात यदि वह समस्त नियमों का सही रूप से पालन करता है तो उसे पूर्ण दीक्षा दी जाती थी, जिसे उपसंपदा कहा जाता था। ऐसा भिक्षु जिसने प्रवज्ञा प्राप्त की थी परंतु उपसंपदा नहीं प्राप्त की थी श्रमणेर कहलाता था। इस श्रमणेरों को 10 शील का पालन करना होता था। पहला, किसी के प्राण न लेना। दूसरा, कोई वस्तु बिना दिए न लेना। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। चौथा, झूठ न बोलना। पांचवा, नशा न करना। छठवा, गलत समय पर भोजन न करना। सातवा, नृत्य संगीत में भाग न लेना। आठवा, श्रृंगार न करना। नौवा, अच्छे बिस्तर या आसन पर न बैठना। दसवा, चांदी या सोना न ग्रहण करना। इनमें से प्रथम 4 पराजिक दोष कहलाते थे, जिसका संघ में कोई निदान नहीं माना जाता है तथा बचे अन्य 6 दोष कम संवेदनशील माने जाते हैं। वर्षावास एवं विहार परंपरा। प्रारंभ में भिक्षु संघ पूर्णतः संगठित नहीं था। इनमें शाक्य पुत्र श्रमण की संज्ञा दी गई थी तथा संघ को चतुर्दिश भिक्षु संघ कहा जाता था। तत्पश्चात बुद्ध ने स्वयं वर्षावास की प्रथा बौद्ध धर्म में स्वीकार की थी। इसके अनुसार वर्षा के मास में भिक्षुगण एक निश्चित स्थान पर निवास करते थे। प्रायः यह आषाढ़ के पूर्ण मास या श्रमण मास से प्रारंभ होता था। बुद्ध ने स्वयं पहला वर्षावास सारनाथ में, दूसरा, तीसरा तथा चौथा राजगिरी में, पांचवा वैशाली में, छठा मुकुलगिरी में, सातवां तारवाती लोक में, आठवां सुषुम्नागिरी में, नवा कौशाम्बी, दसवां परिलेख वन में, ग्यारहवां बालग्राम में, बारहवां मथुरा के पास वरंजन में, तेरहवां चालियागिरी में, चौदहवां श्रावस्ती में, पंद्रहवां कपिलवस्तु में, सोलहवां आलंकी में, सत्रहवां राजगिरी में व्यतीत किया। बुद्ध ने सबसे ज्यादा 21 वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। यहाँ वह सबसे अधिक जेतवन विहार में रहे तथा यही सबसे अधिक उपदेश दिए। बौद्ध धर्म में विकसित हुई विहार परंपरा वर्षावास के कारण विकसित हुई। वर्षावास में भिक्षु जो अस्थाई निर्माण करते थे उसे आवास कहा जाता था। यह आवास वर्षावास के पश्चात तोड़ दिए जाते थे। यही से एक निश्चित आवास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यह आवास आराम कहलाते थे। आराम नगर के पास सुख सुविधा युक्त आवास थे, जिसे नगर निवासी अपने मनोरंजन हेतु बनवाते थे। यह आराम उपासकों द्वारा भिक्षुओं को दान में दिए जाते थे। मगध के शासक बिंबिसार ने राजगिरी के बेलुवन में एक आवास स्थल बनवाया, जो पहला आराम संघ था। संघ को दान में दिए जाने के कारण यह बेलुवन संघाराम कहलाया। ऐसे आवास या आराम स्थल जो संघ के रूप में स्थापित हो गए थे का प्रमुख संघ थेर कहलाता था। वह एक निश्चित सीमा के भिक्षु का प्रधान होता था। आराम में भिक्षु के निवास हेतु झोपड़ियां बनी होती थी, जिनमें विहार कहा जाता था। प्रत्येक भिक्षु के निर्धारित स्थान को परिवेण कहा जाता था। इन विहारों में भिक्षुओं के बिस्तर, बैठने का स्थान, भंडार गृह आदि होते थे। यह आवास या आराम रूप में लेन के रूप में स्थापित हुए। लेन ने ही विहार व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। बौद्ध संघों की प्रणाली जनतंत्री थी। संघ के अधिवेशन संघागार या आराम में होते थे। चिल्लवक के अनुसार 10 वर्ष का अनुभवी भिक्षु ज्येष्ठानुक्रम में सभा में आसन लगाता था। इस भिक्षु अधिकारी को आसन पन्नापम संघ कहा जाता था। अधिवेशन के लिए गणमूर्ति का भी विधान था। बुद्ध ने उपसंपदा के अनुसार अवसर पर केवल 2 या 3 भिक्षुओं की उपस्थिति नियमित नहीं मानी थी। मावक के अनुसार कम से कम 10 भिक्षुओं की गणमूर्ति होनी चाहिए। सीमांत प्रदेशों में जहाँ भिक्षुओं की संख्या कम थी तथा दक्ष भिक्षुओं को बटोरने में कठिनाई होती थी, बुद्ध ने वहाँ स्वयं भिक्षुओं की संख्या संघथेर को लेकर कम से कम 5 कर दी थी। महावग में 5 प्रकार के संघ बताए गए हैं, जिसमें पूरक संख्या 4, 5, 10, 20 तथा 20 से अधिक सदस्यों की होती थी। चतुर्वर्ग या 4 भिक्षुओं का संघ सबसे छोटा था, किंतु यह संघ सीमांत प्रदेशों के अतिरिक्त उपसंपदा आदि महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं कर सकता था। संघ का अध्यक्ष विनयधर कहलाता था। पूरक संख्या में उनकी गणना नहीं की जाती थी। भिक्षुणी श्रमशेण दूसरे धर्मों के प्रतिनिधियों की गणना संघ पूरक में नहीं की जाती थी। संघ प्रति की के अभाव में संघ वग या व्यग्र कहा जाता था। असंपूर्ण भिक्षु संघ का निर्णय वग कम अनियमित था तथा उस पर अमल नहीं किया जाता था। अनुपस्थिति सदस्यों अनुमति से भी उसे नियमित नहीं किया जा सकता था। योग्य सदस्यों की पूरी बैठक सम्मुखा कहलाती है। बुद्ध ने पाक्षिक बैठक भी प्रारंभ की। इसके अनुसार एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले भिक्षु को 15 दिन में एक बार संघ की बैठक में आना अनिवार्य था। इसे उपोस्थ कहा जाता था। संघ के वैध अधिवेशन के शर्त निम्न थे। पहला, संघ पूरक संख्या में उपस्थिति। दूसरा, केवल ऐसे सदस्यों का संगठन जो सभा में उपस्थित होने के अधिकारी हैं। तीसरा, उपस्थिति या अनुपस्थिति सभी अधिकारी सदस्यों के छंद या मत का संग्रह। चौथा, विचार अयोग्य विषयों के लिए संघ की अनुमति। पांचवा, 3 बार विचार योग्य विषय या ज्ञप्ति की घोषणा। अधिवेशन के लिए संघ उपयुक्त नियम बनाता था। बैठक में प्रस्ताव के बिना कोई स्थापित नहीं हो सकता था। प्रगति के पश्चात इसका नियमित अनुशासन होता था। प्रस्ताव के कारण वाद विवाद उसी तक सीमित हो जाता था। जिस ज्ञप्ति पर कोई मतभेद नहीं होता था वह एक बार पढ़ी जाती थी। वाद विवाद की स्थिति में 3 बार पढ़ा जाना आवश्यक था। चुल्लवग्ग में वर्णन के अनुसार पहली स्थिति को ज्ञप्ति द्वितीय कर्म तथा दूसरी स्थिति को ज्ञप्ति चतुर्थ कर्म कहते थे। महावग्ग के अनुसार ज्ञप्ति प्रस्तुत होने पर सदस्यों का मौन रहना सहमति मानी जाती थी। पक्ष में रहने वाले सदस्यों को ही मौन रखने को कहा जाता था। संघ के द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संघ कर्म कहलाते हैं। इसे कर्मवाचा भी कहा जाता है। ज्ञप्तियों को सदस्य मौन से ही सदा ग्रहण नहीं करते थे। प्रायः वाद विवाद भी खड़ा हो जाता था। कभी कभी विवादों को शांत करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की जाती थी। इसे उपबहिक सभा कहते थे। यह उपसमिति चुने हुए सदस्यों से बनाई जाती थी, जो अपने उच्च गुणों के कारण ही चुने जाते थे। इस समिति को संख्या पूर्ति की आवश्यकता नहीं थी। निरपेक्ष निर्णय के लिए समिति सुंदर, शांत एवं एकांत स्थान पर वास करती थी। ऐसे स्थान को वालिकाराम कहा गया है। जब एकमत होने की सारी युक्तियां बंद हो जाती हैं तथा उपबाहिक किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ रहती हैं, तो संघ विषय पर विचार करता है तथा बहुमत के द्वारा उसका निर्णय करता था। यह पद्धति यद्भोषिका क्रिया कहलाती है। ऐसा सदस्य जो पक्षपात मोह भय से मुक्त होता है, उसे संघ के विशेष प्रस्ताव द्वारा मतदान अधिकारी या शलाका ग्राहक नियुक्त किया जाता है। मत के लिए बौद्ध धर्म में छंद शब्द आया है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है। मतदान सलाका ग्रहण से होता है। सलाकाएं लकड़ी से निर्मित होती हैं। प्रत्येक सदस्य को यह निर्देश दिया जाता है कि उस रंग की सलाका को चुने जो उसके मत के अनुरूप हो। सलाकाएं एकत्र करने वाला अधिकारी सलाका ग्राहक कहलाता था। इसके संग्रह की कई विधियां थी। पहला, गुप्त रूप। दूसरा, स्वर्ण कण जलपक। तीसरा, विपतक। चौथा, विश्वस्त, अर्थात पहला गुह्यक, दूसरा कान के पास फुसफुसाकर कहना, तीसरा प्रत्यक्ष, चौथा सबके सामने। यदि मतदान धर्म विरुद्ध होता तो शलाका ग्राहक को उसे रद्द करने का अधिकार था। महावग्ग के अनुसार संघ की बैठक निम्न स्थितियों में वैध मानी जाती थी। पहला, सभा में वही व्यक्ति उपस्थित रहते थे जो मतदान के अधिकारी थे। दूसरा, प्रस्ताव को 1 या 3 बार पढ़कर सभा के सामने रखना। तीसरा, जो मतदान के योग्य हो उसके मतों का ग्रहण काल। चौथा, उपस्थित सदस्यों में विरोध का न होना। पांचवा, आवश्यकता के अनुसार 1 या 3 आवृत्ति द्वारा प्रस्ताव को पारित घोषित करना। प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद में प्रतित्य का अर्थ किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्पाद अर्थात अन्य वस्तु का उत्पन्न होना है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के समय इसका साक्षात्कार किया था। इसका अर्थ है एक कारण के आधार पर एक कार्य की उत्पत्ति या किसी वस्तु पर निर्भर उत्पत्ति। इसका सूत्र ऐसा होने पर वैसा होता है अर्थात इदम सति इदम होती। प्रतिति समुत्पाद सापेक्ष भी है तथा निरपेक्ष भी। सापेक्ष दृष्टि से वह संसार है तथा निरपेक्ष दृष्टि से वह निर्माण। प्रतिति समुत्पाद को कारणवाद भी कहा जाता है। यह शाश्वतवाद, उच्छेदवाद आदि के विपरीत मध्यम मार्ग है। शाश्वतवाद के अनुसार कुछ वस्तुएं नित्य हैं, जिनका न आदि है न अंत। इसका न कोई कारण है और न वे किसी अन्य वस्तु पर आश्रित ही हैं। उच्छेदवाद के अनुसार वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नहीं बचता। प्रतित्य समुत्पाद इन दोनों एकांतिक मतों का मध्यम मार्ग है। वस्तुओं का अस्तित्व है परंतु वे नित्य नहीं है तथा उनका विनाश भी नहीं होता है। प्रतित्य समुत्पाद का मुख्य अभिप्राय दुख की उत्पत्ति को समझना है। दुख का मूल आधार अविद्या है तथा प्रतित्य समुत्पाद अविद्या का स्वरूप प्रकट करता हुआ परमार्थ की ओर संकेत करता है। बुद्ध के अनुसार दुख की उत्पत्ति का मुख्य कारण कर्म है। कर्म का मूल तृष्णा है तथा तृष्णा एक ओर अविद्या पर आश्रित है, दूसरी ओर सुख के अनुभव पर। दुख का कारण इच्छा, सुख, काम, तृष्णा, अहंकार, संकल्प, स्पर्श तथा संज्ञा है। यह प्रतित्य समुत्पाद की प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था में भिन्न भिन्न दुखों के निदानों से जोड़कर कारणों की श्रृंखलाएं प्रस्तुत की गई हैं। इसकी पुष्टि अभिधम्म कोश से होती है जिसमें 12 निदानों का वर्णन है। तृतीय अवस्था में प्रतित्य समुत्पाद के 12 निदानों का उल्लेख हुआ है जो जगत की सृष्टि को इंगित करता है। इसे भाव चक्र, जीवन मरण चक्र, धर्म चक्र, अलात चक्र भी कहा जाता है तथा इसे 3 शीर्षकों में विभक्त किया गया है। 12 निदान अविद्या, संस्कार, विज्ञान, पूर्वजन्म से संबंधित, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, वर्तमान जीवन से संबंधित, भाव, जाति, जन्म, मरण, भविष्य से संबंधित। बौद्ध धर्म के अनुसार पतित समुत्पाद 4 प्रकार के होते हैं। क्षणिक, पाकर्षिक, संबधिक, आवस्थिक अर्थात तात्कालिक 3 निरंतर जन्मों से संबंध के कारण, हेतु फल संबंध से युक्त होने के कारण, परलोक की अवस्था के कारण। जैकोबी तथा श्रोडर का यह मत है कि बुद्ध का प्रतित्य समुत्पाद कपिल के सांख्य दर्शन से प्रभावित है। शेनॉट के अनुसार यह पतंजलि के योग दर्शन से प्रभावित है। अनात्मवाद, बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व का निराकरण किया है। उनके अनुसार रूप, वेदना, संस्कार, विज्ञान आदि आत्मा का निर्माण नहीं करती है। आत्मा का भ्रम 5 स्कंधों में एक ही भ्रम स्थिति के कारण होता है। बुद्ध ने न केवल इसे अस्वीकार किया है अपितु इसे बौद्धिक ज्ञान में रुकावट का माध्यम माना है। रिड डेविस के अनुसार बुद्ध ने स्वयं अनात्मवाद का प्रतिपादन नहीं किया अपितु यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ब्राह्मण धर्म के विरोध में स्थापित किया गया। वह संयुक्त निकाय में वर्णित शब्द अट्ट की तुलना बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित शब्द आत्मन से करती है। बुद्ध ने आत्मा के चिरस्थायी होने का निषेध करते हुए कहा है कि मनुष्य जिस प्रकार स्त्री, पुत्र एवं धन की कामना करता है ठीक उसी प्रकार आत्मा की भी कामना करता है। यदि नित्य आत्मा की कामना का परित्याग मनुष्य नहीं करता है तो वह निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के अनुसार आत्मवासना में लीन रहना ऐसी रमणी से स्नेह करना है जिसे कभी देखा नहीं गया हो। बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने पर भी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। कर्म ही मनुष्य के वास्तविक जीवन का निर्धारण करता है। मनुष्य अपने कर्म के आधार पर ही अपनी नियति को परिवर्तित कर सकता है। एक व्यक्ति का वर्तमान अस्तित्व उसके भूतकाल के कर्मों का फल है तथा उसका भविष्य उसके वर्तमान के आधार पर निर्मित होगा। जीवन उस विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। रिच डेविड ने इसे चरित्र का पुनर्जन्म कहा है, आत्मा का नहीं, तथा यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक मनुष्य की तृष्णा पूर्णतया समाप्त नहीं होती है। बुद्ध ने सभी वस्तुओं को भी अनित्य माना है तथा इसे क्षणिकवाद कहा है। बुद्ध के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित होती है अतः इससे एक ही प्रकार के परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्कंद सिद्धांत, प्राचीन भारतीय धर्मों में संसार तथा पुनर्जन्म जैसी अवस्थाओं का प्रमुख स्थान है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान पंच स्कंद कहलाते हैं। कर्म के मानसिक आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि जन्म मरण का अंत संभव है। अविद्या के ओझल होने पर 5 स्कंदों से निर्मित स्वरूप समाप्त हो जाता है। जगत का जो रूप है उससे मनुष्य बंधा हुआ है या बंधन अविद्या के कारण और आबद्ध हो जाता है, किंतु अविद्या के समाप्त होने से आबद्धता समाप्त हो जाती है। पंच स्कंदों के रूप में जो 2 भाग हैं वह हैं भाव तथा भूत पिंड। इसके कार्यकलाप कार्य कारण के तारतम्य में स्थित रहते हैं। प्रत्येक वस्तु किसी का कार्य तथा किसी का कारण होती है। इसका एक पक्ष क्षणिकता है तथा दूसरा संतति जिसे स्थायित्व का ज्ञान होता है। कर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म ही मनुष्य के वास्तविक जीवन का निर्धारण करता है। प्रारंभ में कर्म के 2 वर्गीकरण थे, भौतिक एवं शारीरिक तथा मानसिक एवं चैतसिक। भौतिक एवं सांसारिक कर्म प्राकृतिक रूप में चलता रहता है तथा जन्म जरा एवं मरण का क्रम बना रहता है, किंतु कर्म की मानसिक आवृत्ति मनुष्य के कार्य क्षेत्र में है। कर्म के इसी रूप को बुद्ध ने माना है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने स्वयं कहा, भिक्षुओं मैंने चेतना को कर्म कहा, चेतना पूर्वक कर्म किया जाता है, कार्यों से मन से वाणी से। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग में इसी कुशल एवं अकुशल चेतना को कर्म माना है। संयुक्त निकाय में वर्णित है कि कर्म अनात्मकृत है, न यह शरीर तुम्हारा है, न औरों का, न भिन्न मानने से, न यह आत्मकृत है, न परिकृत हेतु के सहारे उत्पन्न हुआ है, हेतु न रहने पर निरुद्ध हो जाएगा। बुद्ध का कर्म इच्छा से उत्पन्न किया जाता है तथा इच्छा से ही खत्म किया जा सकता है। कर्म को आश्रय तथा अनाश्रय कर्मों की संज्ञा दी जा सकती है। आश्रय कर्म वे हैं जिनसे अच्छे एवं बुरे कर्म उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत वह कार्य जो आर्य सत्य का ध्यान करते हुए निर्वाण की ओर ले जाता है, अनाश्रय कर्म कहलाता है। ये अच्छे एवं बुरे कर्मों का प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। कर्मों का वर्गीकरण 3 तरह से हो सकता है, इस जन्म में, अगले जन्म में, भविष्य में। इन कर्मों को आत्मज्ञान से ही दूर किया जा सकता है। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग आदि के द्वारा ही संभव है। इन्हीं से ही निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। निर्वाण बुद्ध के अनुसार दुखों का अंत निर्वाण है। इसका अर्थ जीवन निरोध न होकर मनोभाव विरोध एवं चित्तवृत्ति निरोध है। निर्वाण शब्द निरुपसर्ग तथा वान शब्द से निष्पन्न है। यहाँ वान का भाव तृष्णा है, अर्थात तृष्णा का क्षय निरोध या विराम ही निर्वाण है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य कर्म के जीवन रूपी चादर बुनना बंद कर देता है, जिससे पुनर्जन्म का मार्ग बंद हो जाता है। मनुष्य शांति को प्राप्त करता है तथा उसकी तृष्णा शांत हो जाती है। तृष्णा के 3 प्रकार माने गए हैं, भाव तृष्णा, रूप तृष्णा, विभव तृष्णा। ये तीनों तृष्णाएं 3 प्रकार की अग्नियां हैं, जिनके शांत होने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मनुष्य को समाधि में बने रहने की जरूरत नहीं होती है तथा फिर कर्मों के बंधन का भय नहीं होता है। कर्म राग द्वेष तथा मोह आदि की उपस्थिति ही बंधन का कारण बनता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने वाला व्यक्ति इसी जीवन में निर्वाण पाने का अधिकारी है। उसे इसके लिए किसी अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाण के 2 स्वरूप माने गए हैं, उपाधि शेष। इस दशा में मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जो जीवित प्राणी को प्राप्त हो जाता है। अनुपाधि शेष, मनुष्य की लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यह निर्वाण विशुद्ध है तथा उपाधि रहित है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण संन्यास नहीं है, क्योंकि कर्म किसी प्रकार का बंधन नहीं है, यह स्वेच्छा पर आधारित है। कर्म मनुष्य पर आधारित है, मनुष्य कर्म पर नहीं। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात भी अर्हत को कार्य करने पड़ते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार निर्वाण भी अवर्णातीत है। निर्वाण का स्वरूप केवल उपमाओं तथा रूपकों द्वारा ही बताया जा सकता है। नागसेन ने मिनेंडर को निर्वाण की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह सागर की भांति गहरा, पहाड़ की भांति ऊंचा एवं शब्द की भांति मीठा है। जैसे अंधा पुरुष सूर्य की किरणों की व्याख्या नहीं कर सकता है, वैसे ही साधारण मनुष्य निर्वाण को व्याख्यायित नहीं कर सकता है। निर्वाण एक भावात्मक रूप है, यह पूर्णता है। निर्वाण से जन्म ग्रहण के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा पुनर्जन्म एवं दुखों की संभावना समाप्त हो जाती है। वर्ण व्यवस्था। बुद्ध ने अपने धर्म की स्थापना वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों के विरुद्ध की थी। बुद्ध ने ईश्वर एवं वेदों की सत्ता में अविश्वास प्रकट किया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के स्वरूप को लेकर बुद्ध ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, किंतु क्षत्रिय वर्ण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। अगण्य सूत्र में बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की निंदा की है। बौद्ध ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का क्रम निम्न है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र। बौद्ध धर्म का प्रसार। ऋषि पत्तन में प्रथम वर्षावास व्यतीत करने के पश्चात बुद्ध ने उरुवेला की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें 30 धनी युवा मिले। वे किसी वैश्या की तलाश में थे जो उनके धन का अपहरण कर भाग गई थी। बुद्ध ने उन 30 लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। इनके मुखिया का नाम भद्र था, इसलिए उन्हें भद्रवर्गी कहा गया। उरुवेला में पहुंचने पर बुद्ध की भेंट अग्निहोत्री जटिल ब्राह्मणों से हुई। इनकी संख्या लगभग 500 थी। इनका प्रमुख कश्यप था। उर्वेला के पास ही उसके दो भाई रहते थे। एक नदी कश्यप के 300 शिष्य थे तथा दूसरे भाई गया कश्यप के 200 शिष्य थे। 1000 जटिलों के इस वर्ग को बुद्ध ने अपने धर्म में दीक्षित किया तथा उनको लेकर वह राजगृह गए। बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार एवं गौतम की भेंट का उल्लेख है। यह महाभिनिष्क्रमण के पश्चात की घटना है। गौतम नाम से प्रकट होता है कि उन्हें अभी बोधि प्राप्त नहीं हुई थी। बिंबिसार उस समय गिरिव्रज में थे। दूसरी भेंट बिंबिसार से जटिलों एवं अन्य समर्थकों के साथ हुई। बिंबिसार ने बुद्ध को राजमहल में निमंत्रण दिया। राजा ने उन्हें अपने हाथ से भोजन कराया तथा संघ के लिए बेलुवन नामक उद्यान प्रदान किया। राजगीय में ही मगध के निवासियों ने बिंबिसार से यह शिकायत की कि यदि बुद्ध को न रोका गया तो समस्त पुरुष सन्यासी हो जाएं तथा मगध की सेना एवं स्त्रियों के लिए कोई पुरुष नहीं बचेगा। लेकिन बिंबिसार ने उनकी बात अनसुनी कर दी। बिंबिसार ने अपने निजी चिकित्सक जीवक को बुद्ध एवं संघ का चिकित्सक नियुक्त किया। एक बार जब गंगा पार करते हुए बुद्ध के पास नाविक को टटकर देने के लिए धन नहीं था तो बिंबिसार ने समस्त भिक्षुओं के लिए ही टटकर निःशुल्क कर दिया। अजातशत्रु पिता का वध करके शासक बना था। अजातशत्रु ने वैशाली में लिच्छवियों के पराजित होने के कारण बुद्ध से पूछा था। बुद्ध से ही अजातशत्रु एवं वैश्यकार को यह पता चला कि यदि लिच्छवियों की एकता तोड़ दी जाए तो विजय संभव है। अजातशत्रु ने मंत्री वैश्यकार को भेजकर लिच्छवियों की एकता भंग कर दी। इस विजय के लिए पाटलिपुत्र की नींव डाली गई। इसका निर्माण अमात्य सुनीत तथा वैश्यकार की देखरेख में हुआ। पाटलिपुत्र में बुद्ध को भोजन के लिए निमंत्रण किया गया। जिस नगर द्वार से वह बाहर निकले उसका नाम गौतम द्वार रखा तथा घाट के जिस स्थान से गंगा उसे गौतम तीर्थ कहा गया। बुद्ध ने इस अवसर पर पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी भी की। वह भारत का प्रधान नगर बने। राजगिरी की एक अन्य महान घटना संजय के संघ का टूटना था। उनके अधिकांश शिष्य बौद्ध हो गए। बुद्ध के दो सबसे प्रसिद्ध शिष्य महाद्गलायन तथा सारिपुत्र इसी संघ से संबंधित थे। सारिपुत्र सारद्वई के पुत्र थे तथा उपतिष्ठ नामक ग्राम में जन्मे थे। मुद्गलायन मोगली नामक ब्राह्मणी के पुत्र थे तथा राजगिरी के समीप कोलित नामक ग्राम में जन्मे थे। परंपरा के अनुसार जब ये दो वाराणसी में किसी स्थान पर प्रवचन कर रहे थे तो उनकी भेंट अस्सजी नामक बौद्ध भिक्षु से हुई। उसी से प्रभावित होकर इन दोनों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। राजगृह में बिंबिसार की रानी शेमा भी बौद्ध हो गईं तथा उसी ने प्रसेनजीत को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। राजगृह के पश्चात बुद्ध कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु में बुद्ध ने अपने पिता पुत्र राहुल मौसेरे भाई नंद आदि को भिक्षु बनाया। कपिलवस्तु से लौटते समय उन्होंने अनुपी नामक स्थान पर साक्यों को उपदेश दिया। इनमें साक्य नरेश भद्रिक आनंद अनिरुद्ध नापित पुत्र उपाली तथा देवदत्त प्रमुख थे। ये सभी भिक्षु बन गए। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त पहले तो उनका अनुयायी बना फिर विरोधी हो गया। वह बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था किंतु इसमें उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। तत्पश्चात देवदत्त ने खुलेआम संघ में फूट डालने का प्रयास किया तथा आग्रह किया कि बौद्ध संघ के लिए और कड़े नियम बनाए जाएं, जैसे भिक्षु केवल वन में रहें, वृक्ष मूल में आश्रय लें तथा छत के नीचे न सोएं, भिक्षा से निवाह करें, निमंत्रण स्वीकार न करें, वे चित्रों का चीवर पहने, मांस का भोजन न करें। बुद्ध ने इन नियमों को ऐच्छिक माना, अनिवार्य नहीं। देवदत्त ने इसके पश्चात 500 भिक्षुओं को लेकर एक संघ बनाने का प्रयास किया तथा उनको लेकर गया सीस नामक स्थान पर चला गया। सारिपुत्र एवं महामुद्गलायन उन भिक्षुओं को वापस लौटा लाए। देवदत्त ने इस पर क्रुद्ध होकर बुद्ध के विरुद्ध मिथ्या प्रचार प्रारंभ किया। बौद्ध संघ का नेता बनने के लिए उसने 3 बार राजगृह में बुद्ध की हत्या का प्रयास किया। विदित होता है कि प्रारंभ में इसमें अजातशत्रु भी सम्मिलित था। प्रथम प्रयास में उसने बुद्ध को मारने के लिए धनुर्धारियों को भेजा जिनका हृदय बुद्ध ने परिवर्तित कर दिया। दूसरे प्रयास में उसने गिद्धकूट पर्वत से एक शिलाखंड तब गिराया जब बुद्ध नगर की ओर जा रहे थे। इससे बुद्ध के अंगूठे में चोट आई तथा जीवक ने उसका उपचार किया। देवदत्त का तीसरा एवं अंतिम प्रयास बुद्ध को हाथी के द्वारा मरवाने का प्रयास था। उसने नालगिरी नामक हाथी को सुरा पिलाकर उसी मार्ग पर छोड़ने का षड्यंत्र किया जिधर से बुद्ध आया करते थे। परंतु सुरा से उन्मत्त होकर नालगिरी बुद्ध के सम्मुख आया तो उनके सामने नतमस्तक हो गया। बुद्ध ने प्रारंभ में राजगिरी को अपना केंद्र बनाया। राजगिरी में बुद्ध जब सीतावन में ठहरे थे उसी समय श्रावस्ती के श्रेष्ठ सुदत्त या अनाथ पिंडक उनसे मिलने आया तथा दीक्षा प्राप्त की। उसी समय सुदत्त की बहन जो राजगिरी के श्रेष्ठ की पत्नी थी ने बुद्ध का अत्यधिक आदर सत्कार किया। सुदत्त ने उससे प्रभावित होकर श्रावस्ती के जेतवन को छांग देने का मन बनाया। दत्त ने राजकुमार जेत से उद्यान क्रय करने की इच्छा प्रकट की। जेत ने कहा कि जेत उद्यान वह तभी किसी को देगा जब क्रय करने वाला उतनी स्वर्ण मुद्राएं देगा जीतनी और धान की समस्त भूमि पर बेच सकेंगी। सुदत्त ने निर्णय स्वीकार किया। जब राजकुमार जेत ने अपने वचन को से हटना चाहा तो नारायण ने उसके विरुद्ध निर्णय लिया। सुदत्त ने बैलगाड़ियों से 18 कोटी स्वर्ण मुद्राएं लदवा कर जेत उद्यान पर बिछा दी। चुल्लवक के अनुसार जेत ने इससे प्रभावित होकर जेतवन विहार में एक तोरण द्वार तथा भंडार गृह का निर्माण करवाया। मरहूत स्तूप में इस दान का दृश्य अंकित है। कौशल हमेशा बुद्ध का प्रिय स्थान रहा है। बुद्ध ने सबसे अधिक 21 वर्षावास कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बिताए। यहाँ का शासक प्रसेनजीत बुद्ध का अन्यायी भक्त था। इसके संबंध का अंकन भरहूत के शिलापट पर प्राप्त होता है। अंकन में राजा अपने महल के प्रवेश द्वार के बाहर चार घोड़ों के रथ में बैठकर बाहर निकल रहा है तथा उनके साथ हाथी घोड़े एवं पैदल जनों का जुलूस है, जिसके बीच में दो उपासकों के मध्य धर्मचक्र रखा है। ऊपरी तल पुण्यशाला का द्योतक है, जहां बुद्ध ने प्रसेनजीत से अंतिम बार भेंट की थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौशल के कई नगर थे, जैसे अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती, सेतव्य एवं उत्थ। बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात प्रसेनजीत ने बहन महाकौशला को दिए गए काशी के गांव वापस ले लिए। इससे क्रोधित होकर जाशत्रु ने प्रसेनजीत से युद्ध किया। संभवतः पराजित होने के पश्चात प्रसेनजीत ने काशी के 1,00,000 वार्षिक सिक्कों की आमदनी वाले ग्रामों को वापस कर दिया तथा अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से कर दिया। प्रसेनजीत अपनी वृद्धावस्था में साकी जनपद के मुंडलूप ग्राम में बुद्ध से भेंट करने गया हुआ था तथा अपने राज मुकुट एवं खड़ग अपने मंत्री दीर्घकारण्य को सौंप गया था। मंत्री ने विद्रोह कर उसके पुत्र विद्रूप को राजा बना दिया। विद्रूप ने साकियों का विनाश किया। इसका कारण था प्रसेनजीत द्वारा साक्य राजकुमार मांगे जाने पर साक्यों ने धोखे से दासी पुत्री वशभ खटिया को विवाह के लिए भेज दिया। विद्युप को जब यह पता चला तो उसी का बदला लेने हेतु तो उसने साक्यों पर आक्रमण किया तथा 77,000 साक्यों का वध किया। परंपरा के अनुसार लौटते समय बुद्ध के प्रताप के कारण वह अचिरावती नदी में सेना सहित डूब कर मर गया। बचे हुए साक्यों ने हिमालय की तलहटी में भाग कर पिपलवन के मोरी नामक एक नए गढ़ का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य इसी गढ़ से संबंधित था। बौद्ध धर्म ग्रंथों में श्रावस्ती की विशाखा एक महान बौद्ध संरक्षिका के रूप में विख्यात है। वह अंग जनपद के भदी नामक सृष्टि की पुत्री थी। भदी को बिम्बिसार ने कौशलराज प्रसेनजीत के पास भेजा था कि वह कौशल में सृष्टि का कार्य करे। श्रावस्ती को जाते हुए उसने एक सुंदर स्थान पर सायंकाल बिताया, जिसके कारण वह स्थान साकेत कहलाता है। विशाखा का विवाह साकेत के महासृष्टि मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन से हुआ था। मिगार ने अचेलक साधुओं के कहने पर विशाखा के चरित्र पर आरोप लगाया, जिससे असत्य माना गया। तत्पश्चात बुद्ध ने विशाखा को बौद्ध मत में दीक्षित किया। एक बार विशाखा बुद्ध के प्रवचन सुनते समय अपना आभूषण सभा में भूल आई। आनंद ने उसे वापस किया, परंतु विशाखा ने उसे अस्वीकार कर दिया। बौद्ध संघों को दान कर दिया। उसी धन से श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार का निर्माण हुआ। विशाखा ने श्रावस्ती में इस विहार में 8 प्रकार के दानों की व्यवस्था, वर्षावास के लिए चवर, आगंतुक भिक्षु के लिए भोजन, जाने वाले भिक्षु के लिए भोजन, उनके परिचारक के लिए भोजन, रुग्ण भिक्षु एवं उसके परिचारक के लिए भोजन, रोगी भिक्षु के लिए औषधि तथा पथ्य तथा भिक्षुणियों के लिए स्नान शाटी। श्रावस्ती निवास के समय बुद्ध को लिच्छवी संघ के लोगों ने आमंत्रित किया। वहाँ महामारी फैली हुई थी। वहाँ के लोगों का विश्वास था कि बुद्ध के आने से महामारी दूर हो जाएगी। उस समय वज्जी संघ 8 गढ़ों वज्जी, विदे, लिच्छवी, यात्रिक, उग्र, भोग, इच्छवांकु तथा कौरव में विभाजित था। महावस्तु में वैशाली के वैभव का वर्णन है। लिच्छवियों ने बुद्ध का भारी स्वागत करते हुए हाथियों एवं रथों का जुलूस निकाला तथा गंगा से नगर तक के मार्गों को पुष्प मालाओं, कदली वृक्षों आदि से सजाया। महावज्ञ में वैशाली को एक समृद्ध नगर कहा गया है, जिसमें 7,707 राजा, 7,707 कूटागार, 7,707 आराम, 7,707 कमल पुष्प किरणी इत्यादि थे। वैशाली में 8 प्रसिद्ध चैतन्य थे, उद्देन, गौतमक, सप्तमलक, बहुपुत्र, चापाल, कपनीहय, शारदद्द तथा माकृतहय। बुद्ध घोष के अनुसार ये चैत्य पक्ष पूजा के लिए पूजा के स्थान थे, जिसे लिच्छवी ने बुद्ध को दान दे दिया था। वैशाली की प्रसिद्ध गढ़िका आम्रपाली ने अपना विशाल आम्रवन तथा बालिका ने बालिकाराम विहार भी बुद्ध को दान दे दिया। लिच्छवियों ने महावन में एक कूटागार शाला बुद्ध के लिए बनवाई, जिसमें बुद्ध ने अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। लिच्छवियों के सेनापति महाली ने भी बुद्ध को भोज दिया तथा बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जैनों ने यहाँ बुद्ध के मांस खाने का विरोध किया था। बुद्ध का 8वां वर्षावास भग्गो के यहाँ व्यतीत हुआ। यहाँ पर बुद्ध ने सुसुमारी गिरी के भेष कला वन के मृगदाओं के पास वर्षावास व्यतीत किया। यहाँ के राजकुमार बोधि ने बुद्ध को अपने नए राजमहल में आमंत्रित किया, परंतु बुद्ध ने यहाँ प्रवेश तभी किया जब बोधि ने प्रसाद की चिड़ियों पर बिछाए हुए श्वेत वस्त्र को हटा नहीं दिया। यहाँ पर बुद्ध ने नकुल पिता एवं उनकी पत्नी को उपदेश दिया। नवा वर्षावास बुद्ध ने कौशाम्बी में व्यतीत किया। बुद्ध के काल में कौशाम्बी का शासक उदयन था। धम्मपद अट्टकथा में उदयन की तीन पत्नियों का वर्णन प्राप्त होता है। पहला वाशवदत्ता या अवंती के राजा चंड प्रद्युत की पुत्री थी। प्रद्युत ने हाथियों का आकेट करते समय उदयन को पकड़ लिया तथा वाशवदत्ता को वीड़ा की शिक्षा के लिए नियुक्त किया। ये दोनों ही विवाह करने हेतु कौशाम्बी भाग निकले। दूसरा सामवंती जो महावती नामक धनांडे की पुत्री थी तथा बुद्ध की भक्त थी तथा मांगदी कन्या की ईर्ष्या के कारण महल के लिए एक अग्निकांड क्षण में जल मरी। तीसरा मांगदिया जिसके साथ बुद्ध ने विवाह करने से मना कर दिया था। कोशिता नाम बिहार के पिंडौल भारद्वाज नामक भिक्षु के प्रभाव में आकर धर्म का समर्थक हो गया था। कौशाम्बी में चार बौद्ध संघारम थे जिनमें घोषित के द्वारा बनवाए हुआ घोषिताराम विहार तथा पावरिया का अम्र विहार प्रसिद्ध था। कौशाम्बी का यह वर्षावास बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं का काल था। प्रथम घटना मांगदिया संबंधित थी। ब्राह्मण कन्या मांगदिया ने बुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा। बुद्ध के द्वारा इनकार किए जाने के पश्चात उसने रुष्ट होकर चरित्र हनन का प्रयास किया। बाद में मांगदिया ने राजा उदयन से विवाह किया तथा उदयन की दूसरी पत्नी श्यामावती को आग में जलवा कर मार डाला। विनय पिटक के अनुसार इसी समय भिक्षु ने अपना दोष स्वीकारने से मना कर दिया जिससे उसे संघ से निष्कासित कर दिया गया। भिक्षु ने संघ नियमों को चुनौती दी तथा बुद्ध से प्रतिवाद किया। समस्या के न सुलझने पर बुद्ध व्यथित होकर परिलेख वन में एकांतवास हेतु चले गए। इस पर नगरवासियों ने भिक्षुओं की निंदा की। भिक्षुओं ने गलती स्वीकार की। उन्होंने बुद्ध से क्षमा प्रार्थना की जो उस समय श्रावस्ती में दसवां वर्षावास व्यतीत कर रहे थे। बुद्ध ने अपना बारहवां वर्षावास बेरंजा नामक स्थान पर व्यतीत किया। यहाँ पर एक ब्राह्मण ने बुद्ध का मत स्वीकार कर उन्हें वहाँ वर्षावास के लिए आमंत्रित किया, परंतु अकाल के कारण वह उन भिक्षुओं का आतिथ्य न कर सका। तत्पश्चात 500 अश्वे के व्यापारियों पर उन भिक्षुओं के भोजन का भार आ गया। इस समय महामदगलायन ने चमत्कार से सभी को भोजन उपलब्ध कराने के बारे में सोचा, लेकिन बुद्ध ने इसकी अनुमति नहीं प्रदान की। बुद्ध ने अपना 15वां वर्षावास श्रावस्ती में न्यायगृह राम विहार में व्यतीत किया। यहीं पर बुद्ध ने महान मान को शाक्य संघ का प्रमुख नियुक्त किया, क्योंकि भद्वी ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर ली थी। भद्वी को भिक्षु हो जाने पर उसका ससुर सुप्रबुद्ध शाक्य बुद्ध से अत्यंत क्रोधित हुआ तथा मदिरा पान कर उन पर प्रहार करने का प्रयास किया। धम्मपद अट्टकथा के अनुसार इसी समय सुप्रबुद्ध का देहांत हो गया। राहुल ने यही अपनी उप संपदा पूरी की तथा 20 वर्ष की आयु पूर्ण की थी। श्रावस्ती के इस वर्षावास में बुद्ध ने तिष्ठ नामक रुग्ण भिक्षु जो दुर्गंध युक्त त्वचा रोग से पीड़ित था की स्वयं परिचर्चा की। बुद्ध ने स्वयं गर्म जल से उसे स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहनाए। भिक्षुओं को उपदेशित किया कि तुम लोगों के माता पिता नहीं हैं, अतः तुम पर एक दूसरे के माता पिता बनो। बुद्ध का श्रावस्ती में व्यतीत किया गया 20वां वर्षावास भी महत्वपूर्ण घटनाओं का काल रहा है। इस वर्ष बुद्ध ने श्रावस्ती में निर्मम डाकू अंगुलीमाल का चित्त परिवर्तन किया। इस समय कौशल नरेश प्रसेनजीत बुद्ध से मिलने पहुंचा। अंगुलीमाल को देखकर वह भयभीत हो गए, परंतु बुद्ध ने यह सूचित किया कि वह बौद्ध भिक्षु हो गया है। प्रसेनजीत ने उसे उपहार देने चाहे, परंतु अंगुलीमाल ने कहा, राजन तीन चिवर मेरे लिए पर्याप्त हैं। इस काल के एक अन्य प्रमुख घटना बुद्ध के द्वारा आनंद को अपना व्यक्तिगत परिचारक नियुक्त करना था। इससे पहले भिक्षु चक्र पद्धति से बुद्ध की परिचर्या के लिए रहते थे। एक बार नागसमाल नामक परिचारक जिधर बुद्ध की इच्छा थी उधर न जाकर अनित चला गया तथा उनके चिवरों को वहीं फेंक गया जिन्हें लुटेरों ने लूट लिया। ऐसा कई बार घटित हो चुका था। अतः बुद्ध ने अपनी वृद्धावस्था के कारण एक विश्वसनीय परिचारक रखने की बात कही। सारिपुत्र एवं महामुद्गलायन समेत करीब 80 लोगों ने अपनी सेवाएं अर्पित की, परंतु बुद्ध ने आनंद को चुना जिसे उसने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया। ये शर्त थी, आनंद उन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेगा जो स्वयं बुद्ध के निमित्त प्रदान की गई हों, जैसे गंध कुट्टी, सूक्ष्म वस्त्र, विशेष भिक्षा इत्यादि। व्यक्तिगत आमंत्रण के समय उसे बुद्ध के साथ जाने का अधिकार होगा। वह भेंट के लिए आए हुए लोगों को बुद्ध तक पहुँचाएगा, किसी भी समय बुद्ध से मिल सकेगा। बुद्ध जो उपदेश उसकी उपस्थिति में देंगे वह उसे उनकी सहमति से दोहरा सकेगा। बुद्ध ने इसके पश्चात लगभग श्रावस्ती में ही रहना प्रारंभ कर दिया तथा कमी समय भ्रमण के लिए निकले। बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ तथा 80 वर्षों तक वे जीवित रहे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 45 वर्षों तक बुद्ध वर्षावास के अतिरिक्त भ्रमणशील रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल में जीवन में पूर्व में चंपा एवं संथाल परगना तथा पश्चिम में कुरुक्षेत्र के कंपास दम्य तथा शल्यकोटि थत्त के शासक चंड प्रद्योत ने भी बुद्ध को नगरों तक उत्तर में कपिलवस्तु तथा दक्षिण में कौसाम्बी तक गए। अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत ने भी बुद्ध को अपने यहाँ आमंत्रित किया, पर वृद्धावस्था के कारण वह नहीं जा सके। लेकिन उज्जैन के निवासी एवं अपने शिष्य महाकच्छायन को चंड प्रद्योत के यहाँ भेजा। बुद्ध जीवन के 79वें वर्ष राजगृह में चले गए। वह वृद्ध हो गए तथा उनका शरीर जर्जर हो गया था। राजगृह से बुद्ध अबलट्टिका नालंदा होते हुए पाटलीग्राम की ओर अग्रसर हुए, जहाँ अजातशत्रु लिच्छवियों के पराभव हेतु पाटलीग्राम किले की नींव रख रहा था। यहाँ बुद्ध ने पाटलिपुत्र के भविष्य के वैभव की भविष्यवाणी की तथा कहा, जहाँ तक आर्यजनों का आयतन है, जहाँ तक वणिक पथों का विस्तार है, यह पाटलिपुत्र नगर सब में अग्रणी होगा। पाटलिपुत्र से गंगा पार कर वे वैशाली पहुँचे तथा वहाँ के वेलुग्राम में अस्वस्थ हो गए। वहीं पर उन्होंने आनंद से कहा कि आज से 3 माह पश्चात तथागत का अंत हो जाएगा। दीर्घ निकाय में यह वर्णित है कि उन्होंने स्वयं कहा, आनंद में जीर्ण वृद्ध अध्यवगत वय प्राप्त हुआ। 80 वर्ष की मेरी आयु है। आनंद जैसे पुरानी गाड़ी बाग बूत कर खींची जाती है, वैसे ही तथागत का शरीर चल रहा है। इसलिए आनंद आत्मदीप आत्मशरण, अन्य दीप अन्य शरण, धर्मदीप धर्मशरण होकर विचरण करो। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार आनंद से प्रतिवाद के पश्चात भी बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण का स्थल कुशीनगर को चुना। वे वैशाली से चलकर भद्रग्राम, हत्तीग्राम, अम्बग्राम, जम्बूग्राम तथा भोगनगर होते हुए पावा की ओर बढ़े। पावा के छुंद नामक लुहार के अम्बवन में रुके। वहां छुंद ने उन्हें अन्य खाद्य सामग्री के साथ शुकर माधव परोसा। बुद्ध ने सुअर का मांस ग्रहण किया। प्रारंभिक परंपराएं शुकर माधव को सुअर का मुलायम मांस मानती हैं, परंतु कुछ अन्य वर्ग इसे कुकुरमुत्ते का पौधा या शकरकंद स्वीकारते हैं। इस भोजन के पश्चात बुद्ध के पेट में पीड़ा प्रारंभ हुई। इस असंख्य और असाध्य पीड़ा के पश्चात भी उन्होंने कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार उन्होंने 6 महानगरियों चंपा, राजगीर, वाराणसी, साकेत, श्रावस्ती, कौसाम्बी को त्याग कर कुशीनारा में प्राण त्यागने का निश्चय किया था। मार्ग में बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे आराम किया तथा कुकुत्था नदी के जल को पिया। यहीं पर उन्होंने आलार कलाम के शिष्य मुल्लपत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नदी में स्नान करके बुद्ध ने अम्बवन में पुनः विश्राम किया तथा आनंद से कहा कि उनके रोग का छुंद के भोजन से कोई लेना देना नहीं है। छुंद का भोजन ही तथागत के भौतिक शरीर का अंतिम भोजन होना निश्चित था। पावा में बुद्ध पूजनी थे। यहाँ के मल्लों ने उपटक नामक नया सभा भवन बनाया था, जिसका उद्घाटन बुद्ध ने किया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समाचार जब आनंद ने मल्लों को भेजा तो वे अपने संगागार में संघ सभा का अधिवेशन कर रहे थे। यहाँ विश्राम के पश्चात बुद्ध ने कुशीनारा की ओर प्रस्थान किया। वे हृदयशी नदी पार कर कुशीनारा पहुँचे तथा मल्लों के सालवन में उन्होंने अंतिम विश्राम किया। आनंद से उन्होंने उत्तर की ओर सिर करके मंच तैयार करने को कहा। पुवाण नामक भिक्षु ने उन्हें पंखा झलना प्रारंभ किया। बुद्ध ने आनंद को निर्देशित किया कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे। सूचना पाकर मल्ल सालवन में एकत्र हो गए। इस समय कुशीनारा के परिवारजक भिक्षु सुभद्र को बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध के अंतिम शब्द निम्न थे, हे भिक्षुओं, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ, जितने संयोजित पदार्थ हैं सब नाश होने वाले हैं, प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। हंददानी भिक्कवे आमंत्रयामि वो वैधम्मा संखार अपमादेन संपाद देशति। मल्लों ने गंधमाला आदि से बुद्ध के पार्थिव शरीर के प्रति श्रद्धा प्रकट। चितादाह के पश्चात मल्लों ने 1 सप्ताह तक अपने संघागार में धनुष एवं शक्तियों का पंजर रखा व बुद्ध के भस्मावशेष को वहां रखा। भस्मावशेष को महाकश्यप नामक भिक्षु के अधिकार में रखा गया। द्रोण नामक ब्राह्मण भिक्षु ने भस्मावशेष को 8 भागों में बांटकर विभिन्न स्तूपों का निर्माण किया। यह 8 भाग अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं को दिए गए। कपिलवस्तु के शाक्य, अल्पकप के बूली, मगध के अजातशत्रु, सुषुमारगिरी के भग, रामगाम के कोली, पावा एवं कुशीनार के मल्ल, पिपलीवन में मौर्य, वैशाली के लिच्छवी। एक अन्य विवरण के अनुसार मगध में अजातशत्रु के स्थान पर केशपुत्र के कलाम के भस्म का अवशेष प्राप्त हुआ था। इसके अनुसार अजातशत्रु बुद्ध की मृत्यु का समाचार सुनकर कुशीनारा गया तथा भस्मावशेष की मांग निम्न प्रकार से की, भगवान छत्री थे, मैं भी छत्री हूँ, मुझे भगवान के अस्थि अवशेष का भाग मिलना चाहिए। मैं भगवान के अस्थि अवशेष पर एक स्तूप बनवाऊंगा तथा ब्रह्म भोज कराऊंगा। परंतु महाकश्यप ने आग्रह किया कि वह अस्थि अवशेषों को छोड़कर राजगिरी में बुद्ध के नाम पर एक चैत्य बनवा दे। महावंश के वर्णन के अनुसार अजातशत्रु ने राजगिरी में चैत्यों का निर्माण किया तथा 18 महाविहारों की मरम्मत करवाई, जिन्हें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं ने त्याग दिया था। सम्राट ने व्यवहार पर्वत के सप्तपाणी गुफा के मुख्य सम्मुख मंडप का निर्माण करके प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया। बुद्ध के अवशेष पिपरावा पेशावर के समीप शाहजी की डेरी तक्षशिला की चीर डेरी के धर्म राजिक स्तूप के अवशेषों से प्राप्त किए गए हैं। बौद्ध धर्म का संदेश भिक्षुओं को स्वयं बुद्ध के द्वारा दिया गया। पेस्त की प्रक्रिया के पश्चात बुद्ध भिक्षुओं को स्वयं भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर शिक्षा देने के लिए निर्देशित करते थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध भिक्षुओं ने यह क्रम जारी रखा तथा धर्म मध्य एशिया तक पहुंच गया। श्रीलंका तथा अन्य देशों में यह प्रक्रिया अशोक के काल में प्रारंभ हुई। दीप वंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 9 प्रचारक मंडल भेजे। पहला मज्झातक तथा 4 अन्य भिक्षुओं को गांधार क्षेत्र, दूसरा महादेव को माहिष मंडल, तीसरा रक्षित को वनवासी, चौथा यवन धर्म रक्षित को अपरांतक, पांचवा महारक्षित को यवन देश, छठवा महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, सातवा मध्यम सहदेव तथा मौलक को हिमालय क्षेत्र, आठवा सोंद तथा उत्तर को स्वर्ण भूमि, नौवा महेंद्र इथी उथी सांबल पद्मशील तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचारक मंडल महेंद्र के नेतृत्व में अनुराधापुर में माहिंतेन नामक स्थान पर पहुंचा। समकालीन राजा तिस्स ने अनुराधापुर के पास महामेघवाहन नामक ज्ञान उन्हें दान दिया, जिसे महाविहार कहा गया। यहीं पर श्रीलंका का प्रथम बौद्ध संघ प्रारंभ हुआ। तिस्स ने महेंद्र के नेतृत्व में अपनी 40,000 प्रजा के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा अशोक की उपाधि देव नाम प्रियदर्शी धारण। यहां महाविहार लगभग 500 वर्षों तक श्रीलंका में बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वट्टगामिनी अभय ने अभयगिरी विहार की स्थापना की तथा महातिस्स को इसका प्रमुख नियुक्त किया। इन विहारों में पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया गया, जो आज भी सुरक्षित है। चीन में बौद्ध धर्म लगभग दूसरी शताब्दी में हान वंश में पहुंचा। हान वंश के शासक मिंग ने स्वप्न में एक दैवी पुरुष देखा, जिसे वहां के विचारकों ने बुद्ध कहा। कुछ ही समय पश्चात कश्यप, मातंग तथा धर्मरत्न नामक भिक्षु उसकी राजधानी लोयांग पहुंचे। राजा ने दोनों को संरक्षण प्रदान किया तथा इन दोनों ने यहां एक संघ की स्थापना की, जिसे श्वेत अश्व विहार कहा जाता है। प्रारंभ में चीन में बौद्ध धर्म दो रूपों में विकसित हुआ, पहला कोई शिक्षा प्रणाली, दूसरा शमालेख। कोई शिक्षा का प्रवर्तक ताओवान नामक भिक्षु था। यह शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक सीमित थी तथा ऐसे लोगों को दी जाती थी जिन्हें ताओ एवं कंफ्यूनिसिस शिक्षा का ज्ञान होता था। लेकिन ऐसी बौद्ध शिक्षाओं का विरोध भी प्रारंभ हो गया। इस विरोध को समाप्त करने के लिए जो लेख लिखे गए उन्हें शमालेख की संज्ञा दी गई। माओ नामक भिक्षु ऐसे प्रथम लेखकों में एक था। सुई एवं तांग वंश के प्रभाव में चीन में बौद्ध दर्शन का विकास हुआ तथा यहां 10 संप्रदाय विकसित हुए, जिसमें कुमार जीव ने नागार्जुन के शून्यवाद के आधार पर सनलून संप्रदाय स्थापित किया। इसके अतिरिक्त अमोघ व्रज नामक भिक्षु ने भी चीन के बौद्ध धर्म में अपना योगदान दिया। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ तांत्रिक बौद्ध धर्म या व्रजयान का प्रभाव अधिक है। तिब्बत के परंपरागत धर्मवान तथा व्रजयान के मिश्रण ने तिब्बत में एक नए प्रकार के बौद्ध धर्म को जन्म दिया, जो तंत्र जादू आदि पर आधारित था। सर्वप्रथम पद्मसंभव ने कश्मीर व्रजयान को तिब्बत में प्रसारित किया। पद्मसंभव को यहाँ रिम्पो कहा जाता है। पद्मसंभव ने ही समनियश में प्रथम विहार की नींव रखी। इसमें इनके साथ नालंदा विश्वविद्यालय के दो प्रसिद्ध शांति रक्षित एवं कमलशील साथ थे। 7वीं शताब्दी में ही गैम्पो नामक शासक ने अपने गुरु थानमी को मगध तथा कश्मीर बौद्ध संघों की शिक्षा के लिए भेजा। उसने बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म माना। उसी के संरक्षण के कारण तिब्बत के दो महान बौद्ध ग्रंथों कंजूर एवं तंजूर दीपांकर श्री ज्ञान तिब्बत गए। इन्हें यहाँ आतिश नाम से जाना गया। पद्मसंभव ने भी तिब्बत में लामा व्यवस्था प्रारंभ की थी। आतिश को तिब्बत में मंजूश्री का अवतार माना जाता है। वर्मा में बौद्ध धर्म सर्वप्रथम वर्मा नामक जनजाति काबिले के द्वारा स्वीकार किया गया। नौवीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने राज्य की स्थापना की तथा बागन को राजधानी के रूप में स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर वर्मा का नाम म्यांमार पड़ा। इसके शासक अनिरुद्ध ने थेरवाद ग्रहण किया तथा बागन में स्वेजिगन पगोड़ा की स्थापना की। तत्पश्चात बौद्ध धर्म मौन नामक काबिले में प्रसारित हुआ। म्यांमार का बुद्ध को समर्पित पगोंडा विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति। पाली ग्रंथों के अनुसार प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 माह पश्चात हुई। अजातशत्रु ने इस संगीति को संरक्षण दिया तथा राजगीर के व्यवहार पर्वत के सप्तपाणी गुफा में भिक्षुओं हेतु व्यवस्था की। बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में वैशाख मास में हुआ तथा संगीति का प्रारंभ आने वाले वर्षावास अर्थात आषाढ़ श्रावण मास से प्रारंभ हुआ। चुल्लवक महावंश दीपवंश में इस संगीति का वर्णन है। महापरिनिर्वाण के तुरंत पश्चात कुशीनारा में सुभद्र नामक भिक्षु ने बुद्ध की मृत्यु का स्वागत किया, क्योंकि उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात उसे कठिन संघ नियमों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी परिस्थितियों को देखकर महाकश्यप ने बौद्ध शिक्षाओं एवं नियमों के संकलन का विचार किया। कुशीनारा में लगभग 500 भिक्षुओं का एक मंडल बनाया गया जो धम्म एवं विनय का संकलन करेगा। अर्हत न होने के कारण प्रारंभ में आनंद को इन भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं किया गया था, परंतु अधिकांश भिक्षुओं के द्वारा प्रस्ताव करने के पश्चात महाकश्यप ने उसे संगीति हेतु सम्मिलित किया। अधिकांश भिक्षुओं का यह मत था कि आनंद बुद्ध का निजी परिचारक होने के कारण धम्म का पूर्ण ज्ञाता था। राजगृह में संपन्न इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। उपाली ने बौद्ध नियमों का संकलन किया जिसे विनय पिटक कहा गया। आनंद ने बौद्ध शिक्षाओं का संकलन किया जो सुत्त पिटक कहलाया। प्रथम संगीति में ही बुद्ध के सारथी छंदक को ब्रह्मदंड प्रदान किया गया जिसे संघ उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकता था। इसका कारण उसका भिक्षुओं से व्यवहार था, वह घमंडी हो गया था। दंड की घोषणा के पश्चात उसने संघ से क्षमा याचना की जिसे संघ ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात छंदक चन्ना ने अरहत पद को प्राप्त किया। द्वितीय संगीति। चुल्लवक के अनुसार द्वितीय संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात हुई। इस संगीति का कारण वैशाली के वज्जी भिक्षुओं के द्वारा 10 नए नियमों का पालन करना था। यह भिक्षु पूर्व भिक्षु भी कहलाते थे, लेकिन पश्चिम भिक्षुओं जो कौसाम्बी एवं उज्जैन में स्थित थे वे इन नियमों का विरोध करते थे। यह 10 नियम निम्न थे। पहला, पशुओं के सिंह में नमक का संचय कर रखना जिसका समय पड़ने पर प्रयोग किया जा सके। दूसरा, दोपहर के पश्चात भोजन ग्रहण करना। तीसरा, आवश्यकता से अधिक भोजन प्राप्त करना तथा इसके लिए पड़ोसी ग्रामों में दूसरी बार भोजन कर। चौथा, कोई कार्य करने के पश्चात संघ से उसका अनुमोदन लेना। पांचवा, एक ही सीमा में कई स्थानों पर उपोषद का बुलाना। छठवा, किसी कार्य के लिए परंपरा को नियम के रूप में प्रयोग करना। सातवा, भोजन के पश्चात मठा आदि ग्रहण करना। आठवा, सोने चांदी को उपहार स्वरूप ग्रहण करना। नौवा, बिना किनारे वाले कंबलों का प्रयोग करना। दसवां, ताड़ी पीना इत्यादि। जब यश नामक पश्चिमी भिक्षु ने वैशाली भ्रमण किया तो उन्होंने इन नए नियमों की भर्त्सना की तथा अमान्य करार दिया। इसकी इस घोषणा के पश्चात वज्जी भिक्षु ने से पपी सारणी यकाम का दंड दिया। जब यश ने उसका विरोध किया तो उसे उखपड़ी कंप्य का दंड मिला जिसका अर्थ संघ से निष्कासन था। यश ने कौसाम्बी लौट कर पश्चिमी एवं दक्षिणी भिक्षुओं के समक्ष इन बातों को स्पष्ट किया। इन भिक्षुओं ने उस क्षेत्र में 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध भिक्षुओं अघोर घट्ट पर्वत के संभूत सन्यासी तथा सौरिथ्य के रैवत से संपर्क किया। इन सब ने वज्जी संघ के 10 बिंदुओं की घोर भर्त्सना की। रैवत के परामर्श पर इन सभी भिक्षुओं ने वैशाली की ओर प्रस्थान किया। वैशाली में सब कमी की अध्यक्षता में लगभग 700 भिक्षुओं की संगति हुई। मगध के शासक कालाशोक ने इस दूसरी संगीति को संरक्षण प्रदान किया। इस संगीति ने वज्जी के 10 बिंदुओं की भर्त्सना की, लेकिन वज्जी भिक्षुओं ने पश्चिमी भिक्षुओं के मत को स्वीकार नहीं किया। इससे बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया। वैशाली का भिक्षु संघ महासांघिक कहलाया, जबकि पश्चिमी भिक्षु स्थविर या थेरवादी कहलाए। तृतीय संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष के पश्चात हुई। इसका आयोजन सम्राट अशोक के संरक्षण में लगभग 250 ईस्वी पूर्व में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश तथा सामंत पाशादिका में इसका विवरण प्राप्त होता है। अशोक के काल में बौद्ध धर्म पराभव के कगार पर पहुंच गया था। इसका स्वरूप ऐसा हो गया था कि पिछले 7 वर्षों से कोई भी उपोषद तथा पावरण की प्रक्रिया नहीं हुई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म में सुधार के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जिसने एक बौद्ध भिक्षु की नियम का पालन न करने पर हत्या कर दी। अशोक को इससे अत्यधिक पश्चाताप हुआ तथा सम्राट ने मोगलीपुत्र तिश्य से इस कार्य के लिए क्षमा मांगी। मोगलीपुत्र तिश्य ने अशोक को विभज्जीवाद का संदेश दिया। सम्राट ने मुगली पुत्र को संगीति बुलाकर बौद्ध धर्म में सुधार का सुझाव दिया। महावंश के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक से 17वें वर्ष मुगली पुत्र ने 1000 भिक्षुओं का संघ पाटलिपुत्र में अशोक राम विहार में एकत्रित किया तथा 9 महीनों तक कठिन श्रम से प्रथम 2 पिटकों का पुनर्संयोजन किया तथा अभिधम्म पिटक की रचना की। अभिधम्म पिटक का एक भाग कथा वस्तु प्रकरण स्वयं मुगली पुत्र के द्वारा रचित है। कथा वस्तु में थेरवादी का मत समर्थन किया गया है तथा अन्य मतों का खंडन किया गया है। इस संगीति के निर्देशानुसार अशोक ने 60,000 भिक्षुओं को संघ से निष्कासित कर दिया। सम्राट ने इस संगीति के पश्चात भिन्न स्थानों पर धर्म प्रचारक भी भेजे। चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में हुई। यह संगीति कश्मीर के कुंडलमन नामक स्थान पर हुई। कुछ विद्वान इसका स्थान जालंधर भी कहते हैं। दक्षिण के बौद्धों ने संगीति को स्वीकार नहीं किया था। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों में संगीति का कोई उल्लेख नहीं है। संभवतः इसमें थेरवादी भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया था। युनसांग के अनुसार कनिष्क ने बौद्ध धर्म में मत वैमनस्य के कारण पार्श्व से इसमें एक रूपता लाने का आग्रह किया। पार्श्व के परामर्श से ही कनिष्क ने वशुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में कश्मीर में 500 भिक्षुओं की सभा बुलाई। इस सभा में पिटकों पर 10,000 श्लोकों की टीकाएं लिखी गयी जिनमें विभाष शास्त्र कहा गया। संभवतः सर्वस्तिवाद संप्रदाय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनसंग के अनुसार कनिष्क ने इन विभाष शास्त्रों को तांबे के प्लेटों पर अंकित करवाकर पत्थरों के संदूक में भरकर एक स्तूप के नीचे रखवा दिया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म के स्वरूप में असाधारण परिवर्तन हुए। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदायों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया। हीनयान एवं महायान के भी कई संप्रदाय हो गए। धर्मकीति दीघनाथ जैसे विद्वानों ने बौद्ध तर्क शास्त्र का विकास किया। अब बौद्ध धर्म पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत पर अधिक निर्भर हो गया तथा बुद्ध की मूर्तियों का पूजन होने लगा। बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म की मान्यताओं एवं मर्यादाओं का विरोध बुद्ध के जीवन काल में ही प्रारंभ हो गया था। हालांकि विरोधी अपने मत को स्थापित करने में सफल नहीं रहे। प्रथम ऐसा विवरण बुद्ध के अपने चचेरे भाई देवदत्त के संदर्भ में है। परंपरा के अनुसार देवदत्त बुद्ध का बचपन से ही विरोधी था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात वह बुद्ध के 11 सबसे प्रिय शिष्यों में था, लेकिन दुर्भावना के कारण उसने न केवल बुद्ध से प्रतिवाद किया परंतु बुद्ध को मारने तथा संघ का प्रधान बनने का भी प्रयास किया। इन सब कार्यों में वह सफल न हुआ। ऐसा ही कुछ प्रतिवाद कौशाम्बी भिक्षुओं के द्वारा किया गया जिन्होंने बुद्ध के वचन मानने से इनकार कर दिया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सुभद्र नामक भिक्षु ने हर्ष व्यक्त किया था। प्रथम बौद्ध संगीति में पूरण एवं गमनपति नामक भिक्षुओं ने संगीति में भाग लेने से मना कर दिया था। प्रथम संगीति के पश्चात वज्जी भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध नियमों में स्वयं परिवर्तन कर लिया गया जिसका कौशाम्बी भिक्षुओं के द्वारा विरोध हुआ था। इसी कारणवश द्वितीय संगीति में बौद्ध संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, थेरवाद या स्थविरवाद। थेरवाद की उत्पत्ति वैशाली में द्वितीय संगीति के पश्चात हुई। वशुमित्र भव्य तथा विनीत देश के संस्करणों के अनुसार वैशाली के ब्राह्मण भिक्षु महादेव ने अरहत संबंधी 5 नए नियम बनाए, जैसे अरहत भी लालच अज्ञानता संशय से परे नहीं है तथा अरहत केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है तथा अरहत बनने के पश्चात भिक्षु अहो शब्द का उच्चारण करता है, परंतु कौशाम्बी भिक्षुओं ने इसे अस्वीकार कर दिया तथा बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास किया। ऐसा ही कुछ विवरण वज्जी भिक्षुओं के द्वारा 10 बिंदुओं के पालन से प्राप्त होता है। थेरवाद को आर्य स्थविर निकाय स्थविरवाद या आचार्यवाद भी कहा गया। तिब्बत परंपरा के अनुसार उज्जैन का निवासी महाकच्छायन इसका संस्थापक था। इसके प्रारंभिक केंद्र कौशाम्बी तथा उज्जैन थे। थेरवादी पाली भाषा को धर्म की भाषा मानते थे। समयांतर में थेरवाद 11 संप्रदायों में विभक्त हो गया। थेरवाद महिषाचक धर्मगुप्त सर्वस्तिवाद श्याम कश्यपी सनकांतिका वर्षीपुत्री या सम्मितीय धर्मोत्तरीय भरदयानीय शान नागरिक। सर्वस्तिवाद के प्रवर्तक राहुल भद्र माने जाते हैं। यह गांधर मथुरा तथा कश्मीर में प्रचलित था। कुषाण शासक कनिष्क ने इसे संरक्षण प्रदान किया जिससे यह चीन तथा मध्य एशिया तक विस्तृत हो गया। हीनयान को शावक्यान भी कहा जाता है। शावक का धर्म निर्माण की ओर अग्रसर होना, इसके 4 वर्ग हैं। श्रोतापन शक्रागामी अनागामी अरहत। श्रोतापन वह है जो विकास क्रम के स्रोत से आगे बढ़ता है। इससे चार प्रकार की संबोधि प्राप्त होती है, बुद्ध सुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति तथा शीलानुस्मृति, जिसके माध्यम से उसे बुद्ध धर्म संघ तथा शील की अनुभूति होती है। ऐसे श्रावक सात जन्मों के पश्चात निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। श्रोतापन जब क्लेश का विनाश करने के कक्ष में पदार्पण करता है तो चक्रदागामी कहलाता है। ऐसे श्रावक एक ही जन्म में निर्वाण योग्य है। जो वर्तमान जीवन में निर्वाण प्राप्त करे उसे अनागामी कहा जाता है। अरहत की स्थिति इसके पश्चात होती है, जब श्रावक को निर्वाण की प्राप्ति होती है। सर्वस्तिवाद ने पंचधर्मों तथा 75 तत्वों की अवधारणा रखी है। इसी संप्रदाय को वैभाषिक कहा गया है, क्योंकि वे सूत्रों की अपेक्षा विभासों पर अधिक विश्वास करते थे। मई शासक सम्मित शौत्रांतिक तथा थेरवाद में केवल नाम मात्र ही की भिन्नता पाई जाती है। थेरवाद का पूर्ण विकसित स्वरूप ही नियान है। सर्वस्तिवादियों तथा इसके अन्य संप्रदायों ने संस्कृत भाषा, महासंघियों ने प्राकृत भाषा तथा सम्मितियों या वस्यपुत्रियों ने अपभ्रंश भाषा अपनाई। महासांघिकों का संस्थापक महाकश्यप को माना जाता है। यह वज्जी संघ भिक्षुओं के द्वारा प्रतिपादित था, इसलिए इसका प्रारंभिक केंद्र वैशाली था। तत्पश्चात इसका पूर्ण विकास आंध्र प्रदेश में हुआ, इसलिए अंधक नाम से जाना गया। महासांघिक प्राकृत भाषा को धर्म की मुख्य भाषा मानते थे। महासांघिक बुद्ध को लोकोत्तर मानते हैं। इनके अनुसार अरहत पद अंतिम नहीं है, भिक्षु को बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। महासांघिकों के अंतर्गत आने वाले संप्रदाय शैल चैतक एवं वैतुलक कहलाते हैं। महासंघों के 9 प्रमुख संप्रदाय हैं: महासांघिक गोकुलिक, पन्नतिवाद, बहुश्रोत्रीय, चेतीयवाद, एक व्यवहारिक, लोकोत्तरवाद। इस तरह स्थविर एवं महासंघिका को मिलाकर कुल बौद्ध संप्रदायों की संख्या 18 हो गई। इन 18 संप्रदायों के अतिरिक्त सिद्धवाथिका, राजगिरिका, अपरशैल, पूर्वशैल, उत्तरपथक, वैतुल्यक, हेमवत, वज्जीय, हेतुवाद, विभज्जीवाद, अभयगिरीश वसीन, महाविहार वसीन, धर्मरुचिक एवं सांगली आदि प्रमुख थे। हीनयान एवं महायान के दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर निम्न है। पहला, हीनयान के अनुसार बुद्ध के पश्चात किसी को बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, भिक्षु केवल अरहत की स्थिति तक पहुंच सकता है, जबकि महायान के अनुसार भिक्षु के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है। दूसरा, महायान बुद्धो बुद्धिसत्वो मंत्रोच्चारण, बुद्ध को दैवी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को स्वीकार करते हैं। हीनयान बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं अनात्मवाद, चार आर्य सत्य आदि में परिवर्तन नहीं स्वीकार करते हैं। तीसरा, हीनयान में बुद्ध का पूजन उनके संकेतों के माध्यम से होता है। उनके जीवन से संबंधित निम्न चिन्ह माने जाते हैं: माता का स्वप्न विचार हाथी, जन्म बैल कमल, महाभिनिष्क्रमण अश्व, निर्वाण बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन धर्मचक्र, 32 तीलियां थी, महापरिनिर्वाण स्तूप। महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। कुषाण शासकों के संरक्षण में मथुरा एवं गेथार कला केंद्रों पर बुद्ध की हजारों की संख्या में मूर्तियां का निर्माण किया गया। गुप्तकालीन सारनाथ कला केंद्र पर बुद्ध की धातु की मूर्तियां भी निर्मित की गईं। चौथा, हीनयान कौशाम्बी एवं उज्जैनी भिक्षुओं के द्वारा पूर्ण विकसित हुआ। महायान का जन्म वैशाली में हुआ, परंतु उसका पूर्ण विकास आंध्र प्रदेश में हुआ। महायान के दक्षिण में 2 प्रधान केंद्र अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा थे। विदर्भ में ब्राह्मण परिवार में जन्मी नागार्जुन ने महायान को प्रसारित किया। नागार्जुन के निर्देशन में ही महायान श्री पर्वत तथा धान्यकटक नामक स्थान पर पहुंचा। मैत्रेयनाथ आर्यदेव असंग वसुबंधु ने इसे चरमोत्कर्ष प्रदान किया। व्रजयान, व्रजयान तंत्र से प्रभावित बुद्ध विचारधारा है। यह मंत्रयान, सहजयान आदि नामों से भी ज्ञात है। तंत्र विचारधारा में रहस्यमय मंत्रों, जादुई चित्रों, कर्मकांडी वृत्त, भौतिक आकृतियों, मैथुन शारीरिक क्रियाएं, डरावनी दैवी आकृतियां इत्यादियों का प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म में यह विचारधारा 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। राहुल संस्कृतायन के विचार से ब्रजयान आंध्र के श्री पर्वत एवं धान्यकूट में जन्मा। बाणभट्ट के हर्षचरित एवं कादम्बरी, भावुते के मालती माधव तथा कल्हड़ की राज तरंगिणी में श्री पर्वत को तंत्र का प्रधान केंद्र माना गया है। मंत्रयान में धारिणी माला, मंत्रों, हृदय मतों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आर्य मंजुश्री, मूल कल्प, गृह समाज, साधारण पुंडरीक आदि में ऐसे असंख्य मंत्रों का वर्णन है। यह बौद्ध तंत्रवाद का प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। व्रजयान का वर्णन गृह समाज नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। इन्होंने अपनी पद्धति में योग का समावेश किया। सहजयान भी व्रजयान की शाखा है। संप्रदाय का विकास सिद्धसराह के द्वारा हुआ। 8वीं शताब्दी के उदयीन के शासक इंद्रभूति की बहन लक्ष्मिनी करदेवी ने अपनी रचना अद्वैत सिद्धि में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। सहजयान के अनुसार ज्ञान के लिए कठिन श्रम, तप, व्रत आदि की आवश्यकता नहीं है, इसे सहज दैनिक वृत्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। कालचक्रयान व्रजयान का अंतिम परिमार्जित स्वरूप है। इसका वर्ण कालचक्र तंत्र तथा पुंडरीक के द्वारा रचित विमल प्रभा नामक रचना से प्राप्त होती है। इसके अनुसार काल करुणा का भाव तथा चक्र सांसारिकता का प्रतीक है। कालचक्र एक शक्ति है जिसमें करुणा, शून्यता तथा प्रज्ञा के भाव हैं। अतः कालचक्र यान में अद्वैत, प्रज्ञा एवं उपाय का वर्णन है। यहाँ पर आदि बुद्ध को समस्त उत्पत्ति का कारण माना गया है। वे ध्यानी बुद्ध कहने का कारण भी बुद्ध है।